राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बन चारी, यमुना तीरा बन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बन चारी, यमुना तीरा बन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरतः श्री श्रीमदीश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्यलीला प्रोफेसर स्पॉन फाउंडर आचार्य शिवदेव होलवर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताय भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 9 मेरे पीछे बोलिए यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र सब लोग बोलिए ऊंचे स्वर में यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनाम् तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनाम् तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनाम् तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर सम्राट बोलिए यज्ञ अर्थात एकमात्र यज्ञ या विष्णु के लिए किया गया कर्मणः कर्म की अपेक्षा अन्यत्र अन्यथा लोकः संसार अयम् यह कर्म बंधनः कर्म के कारण बंधन तत् उस अर्थम के लिए कर्म कर्म कौन्तेय हे कुंती पुत्र मुक्त संगः संग से मुक्त फलाकांक्षा से मुक्त समाचर भली भांति आचरण करो अनुवाद मेरे पीछे बोलिए श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में उत्पन्न बंधन उत्पन्न होता है अतः हे कुंती पुत्र उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो इस तरह है तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे तो यहां धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए सब लोग मेरे साथ बोलिए ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
इस श्लोक फिर से निकालिए, इस श्लोक को समझेंगे। तो भगवान कह रहे हैं यज्ञार्थात कर्मोन्नत्र लोको यम कर्म बंधन कि जो भौतिक संसार है ये क्या है, कर्म बंधन है। मनुष्य के जीवन में कर्म का बंधन है। यज्ञ के लिए कर्म करने के अलावा यानी भगवान विष्णु के लिए अगर कर्म करते हैं तो उसमें बंधन नहीं है और बाकी कर्म बंधन है, चाहे वो शुभ हो या शुभ हो, लेकिन कर्म बंधन है। मनुष्य जीवन में बंधना पड़ेगा, कर्म से बंधना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। अगर कर्म बंधन से छूटना है तो क्या करो, यज्ञ के लिए या विष्णु के लिए कर्म करो। तदर्थम कर्म कौन दे मुक्त संगह समाचर, इसलिए उनके लिए कर्म करो और आसक्ति से मुक्त होकर के आचरण करो। समाचर सम्यक रूपेण मतलब अच्छी प्रकार से आचरण करो, कर्म में मन लगाओ लेकिन उनके लिए विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की, चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। तो यहां प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। पिछले श्लोक में भगवान ने चर्चा की थी कि शरीर यात्रा भी चलते ना प्रसिद्ध है कर्मणा, और प्रभुपाद जी ये भी समझाते हैं कि ये बहुत ही गलत है कि झूठा ध्यानी या ज्ञानी बनना, लोगों को धोखा देना और इस प्रकार से अपना पेट पालना मिथ्याचारी, इस तरह से ठीक नहीं है। तो फिर सच्चाई से अपना कर्म भी किया जाए और अपने जीवन का निर्वाह भी किया जाए, इसके लिए क्या हुआ है, नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं विशिष्ट सामाजिक स्थिति और गुण को ध्यान में रखकर। विशिष्ट सामाजिक स्थिति का मतलब क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और गुण, गुण क्या है, प्रकृति के तीन गुण। तो प्रकृति के तीन गुणों में ही जो है ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार वर्ण बनते हैं, है ना। तो इनके लिए नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। कौन सा उद्देश्य, शरीर का निर्वाह, शरीर के निर्वाह की पूर्ति हो सके। आगे प्रभुपाद लिखते हैं यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु है, सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है यज्ञो वै विष्णु, दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। हाँ, तो कोई व्यक्ति अगर सीधे भगवान विष्णु की सेवा करता है तो फिर कुछ जरूरत नहीं है उसको दूसरे प्रकार के यज्ञ करने के लिए, कोई आवश्यकता नहीं है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जैसा अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। हाँ, तदर्थम कर्म कौन थे, भगवान कहते हैं तदर्थम, उनके लिए कर्म करो, मतलब विष्णु के लिए कर्म करो। तो कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। कृष्ण भावनामृत का मतलब जितने भी कार्य कृष्ण भावनामृत के हैं, जैसे श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये सब यज्ञ है। श्रवण यज्ञ है कि नहीं, और कीर्तन यज्ञ, स्मरण यज्ञ, पाद सेवनम यज्ञ है ना, अर्चनम पाद सेवनम, और श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, अर्चनम यज्ञ, वंदनम यज्ञ, अर्चनम वंदनम, दास्यम, दास्यम यज्ञ, और सख्यम यज्ञ, और आत्मनिवेदनम यज्ञ, ये सब यज्ञ है कि नहीं। तो सब जितने भी कृष्ण भावनामृत के कार्य हैं सब यज्ञ है। और इस तरह से क्या होगा, आप 24 घंटे यज्ञ में लगे हुए हैं, है ना, इतना सरल हो गया, आप कर्म बंधन से फिर मुक्त रहेंगे ना, इतना सरल है कर्म से छूटना। तो प्रभुपाद लिखते हैं, वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रमाचार्यवता पुरुषेण परापमान विष्णु आराध्यते, विष्णु पुराण 3:8:8। हाँ, तो वर्णाश्रम में भी जो ना विष्णु की आराधना है, तो अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म करना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार वर्ण और आश्रम, ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास, चार आश्रम है, उनके अनुसार भी कर्म करना, तो भी जो है ये यज्ञ है। अगर कोई व्यक्ति इसलिए कर्म करता है, क्या कार्यम इत्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, कि ये मुझे करना चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये नियत कर्म है मेरा, है? संगम त्यक्त्वा फलम चैव त्यागः सात्विको मतः, अगर आसक्ति फल को त्याग करके अगर कर्म कर रहा है तो वो भी क्या है, यज्ञ है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। मतलब अब ये चार वर्ण और चार आश्रम अभी तो कुछ पता ही नहीं, कलयुग में अभी ऐसी स्थिति हो गई है कि ना तो आश्रम का पता है, चार आश्रम और चार वर्ण किसका कौन सा, कौन किस आश्रम में है, कौन किस वर्ण में है, कुछ पता नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए, है ना। तो भगवान की प्रसन्नता किस में है, अगर आप कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं, दूसरों को भक्त बनाते हैं, हरि नाम का प्रचार करते हैं, प्रभुपाद की पुस्तकें वितरण करते हैं, मंदिरों का निर्माण करते हैं, है? अगर आप गुरु के और भक्तों के मार्गदर्शन में अगर कृष्ण भावनामृत के कार्य में लगे हुए हैं तो क्या है, यज्ञ है, क्योंकि विष्णु की प्रसन्नता, विष्णु प्रसन्न होंगे अगर आप गुरु और साधु और शास्त्रों के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं, है? तो फिर आपको जो है ना वर्णाश्रम धर्म के चक्कर में भी पड़ने की जरूरत नहीं है, है? तो प्रभुपाद लिखते हैं, इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। बहुत बढ़िया, आप देश के लिए कर्म करते हैं, है? भाई हम तो समाज सेवा करते हैं, समाज को समाज की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है, तो कर्म बंधन से नहीं छूट पाएंगे आप, देश की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है, आप कर्म बंधन से नहीं छूट पाएंगे, है? तो फायदा क्या है? देश की सेवा, समाज की सेवा, मानव सेवा, इससे कुछ फायदा नहीं। लेकिन अगर भगवान की सेवा में आप अपना जीवन अर्पित कर दोगे तो उससे देश की सेवा, समाज की सेवा, मानव सेवा, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की सेवा हो जाएगी, है ना? कुछ भी नहीं छूटेगा और आप कर्म बंधन से भी छूट जाएंगे। नहीं तो फायदा क्या है? कोई व्यक्ति जो है ना देश की सेवा में अपना पूरा जीवन अर्पित कर देता है या अपने परिवार की सेवा में अपना पूरा जीवन अर्पित कर देता है, अगले जन्म में क्या बन जाता है? चूहा बन जाता है, है? चूहा बन जाए या घोड़ा बन जाए या वृक्ष बन जाए, है ना? तो फिर फायदा क्या है, है ना? तो यही हो रहा है। लोग जो है इसको बहुत बड़ा धर्म मानते हैं। देश की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, है? लिखा है दिल्ली की जगह जगह सड़कों में, देश सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है कि नहीं? तो इस प्रकार की जो ना जो धर्म है, तो ये आपको जो है कर्म बंधन से बांधेंगे, ये आपको छोड़ा नहीं सकते हैं। तो कोई भी कर्म, प्रभुपाद कहते हैं कि अच्छे हो या बुरे कर्म कोई भी हो, वो बांधेंगे। अतः कृष्ण या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, यही महान कर्म कौशल है। कर्म कौशल, कर्म में कुशलता है। योगः कर्मसु कौशलम्, दूसरे अध्याय में है एक श्लोक, योगः कर्मसु कौशलम्। योग का मतलब क्या है? कर्म में कुशलता है। तो मनुष्य में जो है, मनुष्यों में वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो कर्म करने में कुशल हो। कैसे? कि वो कर्म भी करे और कर्म से बंधे भी नहीं, है ना? आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। परिश्रम पूर्वक मतलब समाचर, श्लोक में शब्द है समाचर। समाचर का मतलब सम्यक रूप से आचरण करो, मतलब ये नहीं है कि मन नहीं लगाना है कर्म में, है? है? बेमन से कर्म करना, ऐसा नहीं। अपना पूरा मन लगाओ कर्म करने में, परिश्रम करो कर्म करने में, और कैसे करना है, क्या करना है, ठीक से कर्म करो। आधा काम किया, आधा काम नहीं किया, काम को बोझ मान करके कर रहे हैं, बोझा समझ करके कर रहे हैं, ये कहां से बोझा आ गया मेरे ऊपर, ये नहीं है ना। या अर्जुन जैसे कह रहे हैं कि घोर कर्म है, मैं नहीं करना चाहता हूं, कहां से जो ना मैं फंस गया हूं इस कर्म करने में, है? तो इसलिए भगवान कहते हैं समाचार, अच्छी प्रकार से आचरण करो। क्यों? उनकी प्रसन्नता के लिए, है? तो मैं अपनी प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करना है, तो अर्जुन की प्रसन्नता नहीं है, अर्जुन को बड़ा कष्ट हो रहा है कि ये तो बहुत खराब कर्म है। तो आपके मन के अनुसार कोई खराब कर्म हो सकता है, लेकिन भगवान की अगर उसमें प्रसन्नता है तो किसका महत्व है? भगवान, भगवान का महत्व है। आपके मन का क्या महत्व है? अपने मन को दो झापड़ मारो, चल भग, तुझको खराब कर्म लग रहा है, लेकिन ये कर्म अगर भगवान को प्रसन्न कर रहा है तो मैं ये कर्म करूंगा, है ना? तो आप अपने मन की बात क्यों सुनते हो? अर्जुन अपने मन से कह रहे हैं कि तो बहुत बुरा कर्म है, ये तो बहुत बुरा कर्म है ना? तो आपके मन का महत्व ही क्या है? आपका मन है बेवकूफ, है कि नहीं? तो बेवकूफ जो है ना, कोई बेवकूफ जो है ना कहे कि ये काम खराब है तो आप मान लोगे उसकी बात? भगवान जो है, जो सब प्राणियों के सुहृद हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, सबका भला चाहते हैं, वो कहते हैं ये कर्म अच्छा है, तो फिर क्या जरूरत है सोचने की कि नहीं नहीं ये काम ठीक नहीं, ये काम ठीक नहीं, क्योंकि मेरा मन ऐसा कहता है कि नहीं? तो इसलिए समाचार परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं होना चाहिए। अर्जुन इंद्र तृप्ति के लिए सोच रहे हैं। क्यों? अर्जुन सोच रहे हैं कि हमारा असली कर्तव्य क्या है, कि इनको इंद्रिय तृप्ति प्रदान करें। ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुहानि चा। अर्जुन सोच रहे हैं कि इनकी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही हम चाहते हैं क्या, राज्य मिले हमें, सुख मिले, भोग मिले। तयमे वस्तुतः योग्य थे प्राणान त्यक्त्वा धनानि चा। और वे ही जो लोग जिनकी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम चाहते हैं राज्य, सुख, धन, सब चाहते हैं, और वे लोग अपना प्राण और धन त्याग करके यहां युद्ध में खड़े हैं, तो इनको मार करके मैं क्या करूंगा, राज्य, सुख, भोग मैं क्या करूंगा? कि मैं तो इनकी इंद्रिय तृप्ति के लिए चाहता हूं कि राज्य मिले, सुख मिले, भोग मिले। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, चाहे अपनी इंद्रिय तृप्ति हो, चाहे अपने परिवार की या देश की इंद्रिय तृप्ति हो, इसके लिए नहीं कर्म करना चाहिए। यह भी इंद्रिय तृप्ति का एक विकसित रूप है, एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। कि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति का त्याग कर रहा है किस लिए, अपने घर परिवार के सुख सुविधा के लिए, या अपने देश के सुख सुविधा के लिए, है ना। तो ये सब जो है ना क्या है, भौतिक कर्म है, कर्म बंधन है। इंद्रिय तृप्ति बिल्कुल नहीं, किसके लिए, विष्णु की इंद्रिय तृप्ति के लिए। क्योंकि विष्णु की इंद्रिय तृप्ति होगी तो सब जीवों की इंद्रियां तृप्त होंगी, और नहीं तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कर्म करते हैं, या आपकी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कर्म करते हैं, ना मेरी इंद्रिय तृप्ति होगी ना आपकी इंद्रिय तृप्ति होगी, कष्ट ही कष्ट मिलेगा, है कि नहीं। जैसे कि महात्मा गांधी, तो उन्होंने देश के लिए कर्म किया, देश की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म किया, लेकिन देश की इंद्रिय तृप्ति हुई नहीं, देश वालों ने ही उनको मार डाला। तो इस तरह से अपनी इंद्रिय तृप्ति या दूसरों की इंद्रिय तृप्ति में कभी भी इंद्रिय तृप्ति नहीं होगी किसी की, लेकिन भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रभुपाद ने कर्म किया। प्रभुपाद ने जितने भी कर्म किए हैं अपने जीवन में, वो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए, तो यह सबकी इंद्रिय तृप्ति हुई। और प्रभुपाद जी की पूरे दुनिया में पूजा हो रही है ना। तो ये जो है समझना है कि भगवान केंद्र है, यज्ञ अर्थात यज्ञ के लिए, विष्णु के लिए अगर कर्म करते हैं तो इसमें जो है कर्म बंधन नहीं है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, अभी तो हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। अगर आप कर्म बंधन छोड़ जाएंगे तो फिर क्या होगा, भगवान के धाम जाएंगे, और भगवान के धाम में भगवान का आप नित्य संग प्राप्त करेंगे। तो यहां प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब श्रीमद् भागवत का जो चौथा स्कंध है, इसमें पृथु महाराज का चरित्र है। ये 21वां अध्याय है और पृथु महाराज अपनी प्रजा को उपदेश दे रहे हैं। पृथु महाराज जो है भगवान के सत्यावेश अवतार हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो अपनी प्रजा को जो है जब लगाते हैं भगवान की भक्ति में, तो वे जो है संबोधन कर रहे हैं, अपनी प्रजा को संबोधन कर रहे हैं। क्या कहते हैं, अस्ति यज्ञ पतिर्नाम केषाञ्चिन् नरः सत्तमम् इहामुत्रे च लक्ष्यन्ते ज्योत्नावत् यहां क्वचिद् भुवः। प्रभु महाराज कहते हैं, माननीय देवियों और सज्जनों, शास्त्रों के प्रामाणिक कथन के अनुसार कोई ऐसा परम अधिकारी जरूर है जो हमें अपने अपने वर्तमान कार्यों के अनुसार पुरस्कृत कर सकता है, या पुरस्कृत करता है, पुरस्कार देता है, है ना, वही तो है। अन्यथा इस जीवन में तथा मृत्यु के बाद कुछ लोग ज्यादा सुंदर, ज्यादा शक्तिमान क्यों हुए? कोई ना कोई होगा जिसने पुरस्कार दिया है, कोई व्यक्ति ज्यादा सुंदर है, कोई ज्यादा बलवान है ना। तो इसका मतलब है कि पिछले जीवन में किसी ने कुछ विशेष कर्म किए जिसके कारण इस जीवन में आप उसको जो ना ज्यादा सुंदरता मिल गई है, ज्यादा शक्ति मिल गई, ज्यादा बुद्धि मिल गई, है ना, अलग अलग प्रकार की योग्यताएं मिल गई। तो कोई ना कोई यज्ञपति है, अस्ति यज्ञपतिर नाम, कोई ना कोई व्यक्ति यज्ञपति नाम का होगा, यज्ञ का जो फल देने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होगा। आप तात्पर्य में प्रभुपाल लिखते हैं, पृथ्वी महाराज का अपने राज्य में शासन करने का मूल उद्देश्य क्या था, अपनी प्रजा को ईश्वर चेतना के पद तक उठाना, ये मूल उद्देश्य था उनके राज्य का। चूंकि यज्ञशाला में विशाल सभा एकत्र थी, अतः विभिन्न प्रकार के लोग उपस्थित थे, किंतु उनकी अभिरुचि उन लोगों से बातें करने में थी जो नास्तिक ना थे। पिछले श्लोकों में बतलाया जा चुका है कि पृथ्वी महाराज ने नागरिकों को क्या बनने की सलाह दी, अधोक्षस धिया, अधोक्षस धिया यानी भगवान में अपनी बुद्धि को लगाना, ये सलाह दी। और इस श्लोक में भी शास्त्रों का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, यद्यपि उनका पिता कट्टर नास्तिक था, पृथ्वी महाराज के पिता थे बेन, कट्टर नास्तिक थे, जो वेदों में वर्णित आदेशों की का पालन नहीं करता था और जिसने समस्त यज्ञों को रोक दिया था, जिसे सारे ब्राह्मण नाराज हो गए थे और उन्होंने उसको न केवल सिंहासन से उतार दिया बल्कि शाप देकर मार डाला। नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, वे दिन प्रतिदिन जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं उन्हें देव योग के कारण मानते हैं कि तो बाय चांस होता है, है ना, ऐसे वो बोलते हैं। मतलब कोई ईश्वर नहीं है कि जो कोई घटना अचानक घटती है, है ना, तो जो ईश्वरवादी है वो तो कहता है कि ईश्वर के कारण, लेकिन जो अनिश्वरवादी है, नास्तिक है, वो क्या कहता है, ये तो सब बाय चांस है, देवयोग है। नास्तिक लोग